ओम शांति। तभी आप सब ने एक्सरसाइज करके तन को एनर्जाइज किया, तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय है, वो है राजयोग मेडिटेशन, जिसको हम देखें पूरा विश्व आज इस मेडिटेशन का अभ्यास, इस राजयोग का अभ्यास करना चाहता है। तो ये राजयोग क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके फायदे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात इसको करना कैसे है, इसको बताने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर सविता दीदी मौजूद हैं। तो एक बार हम कर्तव्य ध्वनि से दीदी का अभिवादन करते हैं। सविता दीदी विशेष राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1991 में, आप सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारी का एक हॉस्पिटल है, कईयों ने देखा भी होगा और कई अभी जब टूर पे जाएंगे घूमने साइट सीन के लिए तब देखेंगे भी, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो वहां पर 1991 से अपनी सेवाएं दी और 2000 से लेकर 2007 तक जो हमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका थी दादी प्रकाश मणि जी, उनकी देखरेख में भी आप रही। तो आज दीदी विशेष महिला विंग की सेवाओं को देखती हैं, तो आज दीदी हमें विशेष जो आज का विषय है राजयोग क्या है उसके बारे में बताएंगे। सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। आप पिछले दो दिनों से इन प्रातःकालीन सत्रों में राजयोग के विषय में सुन भी रहे हैं और इसका अभ्यास भी कर रहे हैं। तो आपने समझा कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। तो योग अभ्यास से हमारे सकारात्मक चिंतन करने की कला का विकास होता है, क्योंकि उस समय जो भी हम विचार करते हैं वो श्रेष्ठ विचार करते हैं, समर्थ विचार करते हैं। योग अभ्यास से मन शांत होता है, स्वस्थ होता है, हमारा पूरा सिस्टम रिलैक्स होता है और इसीलिए ये हमें तनाव मुक्त करता है। आज हम सब जानते हैं 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, जो स्ट्रेस के कारण होती हैं। तो इसीलिए मेडिकल प्रैक्टिस में भी आज मेडिटेशन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए हमारे मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। योग अभ्यास से हमारा मनोबल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, हमारी जो मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसमें परिवर्तन आने लगता है। हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, कई बार जो भी हमारे आसपास का परिवेश है या व्यक्ति हैं, मीडिया हैं, उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन जो सत्य ज्ञान है उसकी समझ पर आधारित बिलीफ सिस्टम हमारा योग से बनता है। और अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे संबंधों में, तो क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो हमारे संबंधों में भी सुधार होता है और योग अभ्यास से हम अतींद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। एक है इंद्रिय सुख और दूसरा है आत्मिक सुख। तो उस सुख का अनुभव हमें योग अभ्यास से होता है और ये योग सहज योग है। राजयोग के विषय में आपने समझा कि ये बहुत सहज है, इसे कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बुजुर्ग भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक विद्वान भी कर सकता है, और इसमें धर्म, जाति, भाषा, देश आदि का कोई बंधन नहीं है, कोई भी इस राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। तो क्योंकि ये याद है, वैसे आपने समझा योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेह पूर्ण संबंध, जब हम राजयोग कहते हैं तो ये ईश्वर के साथ संबंध है, जो सर्वश्रेष्ठ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। तो ये याद है, संबंध माना याद, ईश्वर की याद। और याद करने का तो हमें अभ्यास है, हम किसी ना किसी को याद करते ही रहते हैं तो हम परमात्मा कर सकते हैं। तो कोई कठिन मंत्रों का जाप करना या आसन प्राणायाम करना, इसकी राजयोग में आवश्यकता नहीं है। हमें हमारी कर्म इंद्रियों का अधिकारी बनाता है, यानी स्वयं का राजा बनाता है, इसलिए हम इसे राजयोग कहते हैं। सामान्यतः हम कर्म इंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी जैसे चलाती हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। जो नहीं देखना चाहिए हम देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, और जो नहीं करना वो करते हैं। लेकिन अधिकारी बनना माना इंद्रिय संयम, जो हमें करना चाहिए वो करने की शक्ति हमें हो, वो हमें राजयोग से मिलती है। ये राजयोग में अनेक राज समाये हुए हैं, तभी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो राज है, आपने समझा, स्वयं का आध्यात्मिक परिचय, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, और आत्मा क्या है, क्या आत्मा के गुण है, क्या कौन सा आत्मा का निवास स्थान है, ये सब राज हमने जाने। ऐसे ही परमात्मा के सब सत्यों को भी हमने समझा, तो और समय के सत्य को भी हम समझते हैं, जो कि इसके आगे के सेशंस में आता है। और इस तरह से हम राजयोग का अभ्यास कर पाते हैं। राजयोग एक चार्जर की तरह कार्य करता है। चार्जर माना जब उसको हम पावर सोर्स से जोड़ते हैं तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती है, नहीं तो बैटरी यूज करने से डिस्चार्ज होती है। अगर हमारा मोबाइल कितना भी महंगा हो लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो वो यूजलेस हो जाता है। तो बैटरी डिस्चार्ज होने का साइंटिफिक रीजन होता है कि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और जब हम उसे चार्ज करते हैं तो फिर उसके केमिकल कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। जब डिस्चार्ज होती है तो हमारे मन वचन कर्म डिसऑर्गेनाइज होते हैं, यानी हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और फिर करते कुछ और हैं। लेकिन जब हम परमात्मा जो पावर हाउस है उससे जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं, योग करना अर्थात ईश्वर से उस संबंध का अनुभव करना, तो फिर वो एनर्जी फ्लो हमारे अंदर होता है और हमारे मन वचन कर्म व्यवस्थित होने लगते हैं। राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है, ये किसी भी संत ने, गुरु ने या सन्यासी ने नहीं सिखाया है, और इसीलिए ये सभी योगों का फल देने वाला है। तो भारत में कई प्रकार के योग किए जाते हैं, योग तो भारत की प्राचीन विद्या है, तो अनेक प्रकार के योग किए जाते हैं। उसमें है ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, समत्व योग, हठ योग। जब हम राजयोग करते हैं तो सभी योग इसमें समाये हुए हैं। ये ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है, समझ मिलती है हमको। ज्ञान माना समझ, समझ मिलती है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, प्राप्ति क्या है। तो जैसे एक लक्ष्य है, कोई भी पढ़ाई भी जो हम पढ़ते हैं उसका भी एक लक्ष्य होता है कि मुझे क्या बनना है। तो राजयोग में भी एक लक्ष्य है, और इसीलिए ये अंधश्रद्धा नहीं है, ज्ञान योग है। बुद्धि योग है क्योंकि मन और बुद्धि माध्यम है परमात्मा से संबंध का अनुभव करने के लिए, और ये अदृश्य माध्यम है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारा संबंध होता है। आज विज्ञान के युग में हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं। मोबाइल से हम बात करते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं। दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन प्रक्रिया क्या है कि मेरे मोबाइल सेट से तरंगे निकलती हैं, टावर से होते हुए दूसरे सेट तक पहुंचती हैं, और फिर वहां से भी यही प्रक्रिया होती है, और हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे हम सामने ही बात कर रहे हैं। तो वो तरंगे हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो कार्य कर रही है। ऐसे ही जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे ईश्वर की ओर ट्रेवल करती हैं। अगर मनुष्य से मनुष्य है तो उसको हम टेलीपैथी कहते हैं। हम जीवन में किसी को हम याद कर रहे होते हैं, उसका फोन आ जाता है, फिर हम कहते हैं अरे हम अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे, आपको ही हम याद कर रहे थे। तो ये क्योंकि हमने सोचा, हमारे विचार उन्हें, और फिर उसका रिप्लाई हमें मिलता है। तो परमात्मा तक भी हमारे विचार पहुंचते हैं जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं। ये हम भक्ति में भी अनुभव करते हैं, खड़े होते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो हमें तो पता है कि मूर्ति जड़ है, मूर्ति तो नहीं सुनती है, फिर भी हम कहते हैं। और जब मन की बात पूरी हो जाती है, जो भी हम इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी, हमको पता है कि भगवान जहां भी है वहां तक मेरे मन की बात पहुंच गई, तो वहां भी हम इस बात को तो सही हमारे दिल की बात सुनते हैं। तो ये बुद्धि योग है। राजयोग कर्म योग भी है, कर्म करते हुए ईश्वर की याद, उसको कर्म योग कहते हैं। सामान्यतः हम इसमें कर्म नहीं करते, हम सांसारिक स्मृतियों में कर्म करते हैं, कर्म होते हैं, यानी जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। लेकिन अगर हम सोते उठते खाते पीते कहीं आते जाते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि इस समय हमारी बुद्धि फ्री होती है, हमारे दैनिक कर्म है जो हम करते ही हैं। और अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो ये सत कर्म हो जाते हैं, और वो एक का पदम गुना फल देने वाले होते हैं ना, या आम का बीज बोने की तरह है, क्योंकि कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, एज यू सो सो यू रीप, ऐसा हम कहते हैं। तो देखते हैं कई तरह के बीज हैं, इसलिए उसके अलग अलग फल होते हैं। अब अगर हमने गेहूं या बाजरा बोया तो हमें फसल मिलती है, लेकिन एक सीजन। अगर हमें दोबारा फसल चाहिए तो फिर हमें दोबारा उसे बोना पड़ेगा, हालांकि एक बीज मल्टीप्लाई हो जाता है, एक बीज एक गेहूं से हमें बहुत सारे गेहूं मिलेंगे। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया या अमरूद बोया, अनार बोया, नारियल बोया, तो क्या होगा, तुरंत फल नहीं मिलेगा, हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब वो फलना शुरू होता है तो फिर हम ही नहीं, हमारी उसको खाती है। इसलिए आम के लिए कहते हैं दादा बोए पोता खाए। तो वर्तमान भी फल मिलता है और भविष्य में भी उसका फल हमें मिलता रहता है। तो परमात्मा की याद में किए गए कर्म इस तरह के कर्म हैं कि वो हमें वर्तमान में भी फल देते हैं, श्रेष्ठ कर्म सुख और शांति प्रसन्नता का अनुभव होता है, और भविष्य में भी वो हमारा प्रारब्ध या भाग्य बनाने वाला होता है। तो कई जन्मों तक वो फल हमारे साथ जाता है। तो इसीलिए ये कर्म योग, हम सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है। कभी भी इस विषय में कहा जाता है तो कहते हैं कहाँ टाइम है इतने, लेकिन क्योंकि कोई हमें बैठ करके कोई ऐसी क्रियाएं नहीं करनी है। राजयोग में हम चलते फिरते हम भगवान को याद करना है, जैसे कहा ये परमात्मा को, तो याद करना है माना हम कभी भी कर सकते हो। इसीलिए हम कर्म योग की तरह कब अभ्यास कर सकते हैं। राजयोग भी है भक्तिमाना परमात्मा के प्रति प्रेम श्रद्धा और समर्पण का भाव। जो भक्तों में रहा, परम भक्त जो हुए ना, भक्त तो सभी होते हैं, लेकिन जिन्होंने भगवान के साथ अपना बहुत करीबी रिश्ता जोड़ा उनको हम परम भक्त कहते हैं ना। तो उनका वो ईश्वर के प्रति प्रेम रहा, समर्पण रहा, और संबंधों का विशेष अनुभव जो कहा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कहते ना कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो भगवान के बिना कोई और संबंध हमारा नहीं, ऐसा भक्तों ने अनुभव किया। या सर्व संबंध एक में, जैसे हम कहेंगे ऑल इन वन, और ये ईश्वर की शक्ति है कि वो सर्व संबंधों का हमें अनुभव करा सके, ऐसा नहीं होता। माँ अलग है, पिता अलग है, पति अलग है, बच्चे अलग हैं, मित्र अलग हैं, अलग संबंध से अलग अलग अनुभव होते हैं। और अगर कोई संबंध नहीं है तो उसकी कमी का भी अनुभव करते हैं कि मेरी माँ नहीं है, या मेरे पिता नहीं है, या मेरा भाई नहीं है, जो भी। लेकिन अगर हैं तो वो हमें वैसा ही अनुभव कराते हैं जैसा हमने भक्तों के लिए अनुभव किया। प्रहलाद ने उनको पिता की तरह याद किया, पिता के रूप में, पति के रूप में याद किया। अर्जुन ने उन्हें सखा माना। तो जब समय आया तो परमात्मा ने उस संभव कराया, प्राप्ति कराई और रक्षा भी की, ये हम सब जानते हैं। उनकी जो कथाएं हैं वो हम परमात्मा ही, इसलिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और राजयोग में हम संबंधों से याद करते हैं ईश्वर को। राजयोग संन्यास योग भी है। वैसे हमारी संस्कृति नहीं, तीर्थ में आश्रम लेना और भगवत भजन में अपना जीवन बिताना, और इसीलिए कभी भी कोई ज्ञान की तरफ आते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं, तो एक भय होता है कि कहीं कुछ तो नहीं पड़ेगा। या हमारे कोई संबंधी भी जाते हैं तो उनके प्रति भी एक भय हो सकता है, भ्रम होता है, कहीं इधर तो नहीं चले जाएंगे। पर राजयोग हमें ऐसा संन्यास नहीं सिखाता है। राजयोग में हम घर गृहस्थ में रहते हुए, करते हुए, अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए भी संन्यास करते हैं, लेकिन वो संन्यास है बुराइयों का संन्यास। जो बुराइयां हमें दुख देने वाली हैं, जिन्हें हम छोड़ना ही चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, या फिर हमें पता ही नहीं कि कैसे उन्हें हम छोड़ सकते हैं, तो परमात्मा हमें वो विधि सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मोह अहंकार को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सुख सकते हैं। कोई संन्यास करके चला जाए और विकारों को न छोड़ पाए तो फिर वो संन्यास, ये कुछ संन्यासी जेल में भी हैं क्योंकि कार नहीं छोड़ पाए, भले संसार छोड़ दिया, यानी सांसारिक कर्म छोड़ दिए लेकिन विकार तो नहीं छूटे। पर संसार ये उस संन्यास से भी महान संन्यास है। तो ये शक्ति हमें राजयोग से आती, इसीलिए ये संन्यास योग भी है, ये समत्व योग है। सर्व स्थिति माना चाहिए थी शांत और स्थिर स्थिति, निंदा स्तुति अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख, ये जीवन के अति की स्थितियां होती करती हैं। मनुष्य को बहुत सफल है, उसको वो सुखी है, मिलती है उसको, तो वो गर्व अहंकार में आ सकता है, उसे बहुत दुख होता है। अगर जीवन में हानि होती है, असफलता होती है, तो वो बहुत निराश हताश हो सकता है। लेकिन एक योगी इस हर स्थिति में स्थिर रह पाता है क्योंकि उसे ज्ञान है, और ये भी समझ है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है, न सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख रहने वाला है ना। ये तो से सागर में लहरें उठती हैं, उठती रहती हैं, तो ये योग की सबसे बड़ी सिद्धि हम कहेंगे। योग चमत्कार भी दिखाते हैं, तो वो अल्पकाल के चमत्कार होते हैं जो उनको नाम प्रसिद्धि धन दिलाते हैं, लेकिन उससे कोई जीवन परिवर्तन नहीं होता। तो राजयोग में हम ऐसी सिद्धियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, जीवन ऊंच बनता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, जैसे कहा कि हर स्थिति में हम अपने मन को शांत रख पाए, इससे बड़ी सिद्धि और कोई नहीं। ऐसे ही राजयोग हठ योग है। हठ योग करते हैं ईश्वर के लिए, कई प्रकार के हठ करना, माना परमात्मा के दर्शन के लिए या अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कोई साधना करते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कोई देवी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, मीलों पैदल चल के, इतनी चढ़ाई करके, और वो भी नंगे पैर पैदल करेंगे, है ना, या साष्टांग करते हुए, माना किसी ना किसी प्रकार का कष्ट देते हैं अपने आप को, या व्रत रखते, निर्जल व्रत रखते, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हमें दर्शन नहीं होगा तब तक हम नवरात्रि में भी कई बार 9 दिन तक कुछ इस तरह के उपवास करते हैं। तो राजयोग में हम इस तरह का हठ नहीं करते, लेकिन परिवर्तन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना, वो एक हठ योग की तरह है कि कुछ भी हो जाए, जैसे वो व्रत हमने रखा, भोजन का व्रत रखा, तो कोई मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन परोस देता है तो हम क्या कहते हैं, आज नहीं, आज तो मेरा व्रत है। हम अपना व्रत नहीं तोड़ते, हमें पता है अगर हमने खाया तो जिनके लिए हमने व्रत रखा है या जिस लिए हमें व्रत रखा है, वो हो सकता है कि वो नाराज हो और हमारी वो कामना पूरी ना हो। तो यहाँ हम व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज सारा दिन कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे, या जो भी हमारी कमी है कि हम आज किसी की बात से फीलिंग में नहीं आएंगे, या खुश रहेंगे, या किसी को भी हम दुख नहीं देंगे, कोई भी एक प्रतिज्ञा ऐसी हमने की सारे दिन के लिए। और फिर कितनी ही स्थितियां बनेंगी जो मुझे गुस्से में लाने वाली हो सकती हैं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई गलती करेगा, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, कोई मेरे ऊपर ही गुस्सा करेगा, कोई मेरी निंदा करे, माना ये सब कारण बनते हैं ना, कोई भी कारण बना लेकिन मुझे गुस्सा आज नहीं करना, क्योंकि ये मैंने व्रत लिया है। तो ये भगवान के से हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उससे हमें फिर बल मिलता है, और एक दिन हमने अपनी कमी पर विजय पा ली, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं। तो सामान्यतः हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं, हम सभी भगवान को याद तो करते हैं पर हमारी अपनी अपनी विधियां हैं। आज हम राजयोग की विधि सीख रहे हैं कि राजयोग में कैसे हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम जो भक्ति करते हैं, हमारे घर में एक छोटा पूजा घर बना लेते हैं, किसी के पास अच्छा स्थान है तो पूरा मंदिर बना लेते हैं, छोटा स्थान है तो एक छोटा अपने इष्ट जो है, जिनको, जिन देवताओं को हम पसंद करते हैं उनको हम रखते हैं, दिया बाती करते हैं, स्तुति कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, और ये हमारा भाव होता है कि सब कुछ हमारे जीवन में ठीक ठाक चलता रहे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। विशेष दिन होते हैं तो हम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी चले जाते हैं, फिर जो विशेष दिन होते हैं उस दिन सभी दर्शन करने आते हैं, तो मंदिर में भीड़ होती है तो भले ही धक्के खा के हम दर्शन करेंगे लेकिन करते हैं, धक्के ही होते ना, एक धक्के में अंदर दूसरे धक्के में बाहर, जब भीड़ होती है तब ऐसे ही दर्शन होते हैं, लेकिन फिर भी हम कि भगवान का आज विशेष दिन है तो उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इसीलिए हम वो करते हैं। दूसरा तरीका हम अपनाते हैं मंत्र जाप करना या माला जाप करना, हमें जो भी हमारे गुरु होते हैं वो हमें कोई मंत्र देते हैं, कोई कोई गुरु करते हैं तो उनको मंत्र मिलता है, या जीवन में कोई संकट आ जाता है, मुश्किल आ जाती है तो हम उपाय जानते हैं ना, कोई ज्योतिषी के पास जाएंगे वो हमें मंत्र कहेंगे, ये मंत्र जपो आप, वो हमने किया, वो मंत्र होते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत आज हमारी भाषा नहीं है, भाषा नहीं है इसलिए हमें उसका अर्थ भी नहीं आता है, अर्थ नहीं आता है तो हमारा भाव नहीं जुड़ता। अब जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सुः सावितर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। तो इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं, या किसको मालूम है तो हाथ उठा सकते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं है तो प्रार्थना अलग चीज है, लेकिन तो अगर कोई संस्कृत के टीचर होंगे तो जरूर हो सकता है कि उन्हें उसका अर्थ मालूम होगा। अब जैसे इतनी सभा में एक है मानो, तो इसीलिए जब हम संस्कृत में मंत्र कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, मानो मैंने कहा मैं शिव को नमन करती हूँ, इसका अर्थ है मैं शिव को नमन करती हूँ। तो पहले तो मुझे ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, फिर मुझे ये भी पता नहीं कि शिव कौन है और कहाँ है, तो क्या मेरा नमन शिव तक पहुंचता है? तो हम जब मंत्र जपने लगते हैं तो हमारा मन सांसारिक बातों से निकलकर मंत्र में आ जाता है, तो थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि मन की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन क्योंकि हमें कहा जाता है 108 बार जपो या 1008 बार, 1,00,000 बार, कितनी बार जपना है वो बताया जाता है, तो हम अब गिनती में लग जाते हैं कि ये 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, या जितना भी 1,00,000 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो योग किससे लग गया, भगवान से लगने की बजाय गिनती में लगा हुआ है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। मंत्र शब्द का अर्थ, मंत्र संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है मन को मुक्त करने वाला, मन प्लस त्र, त्र संस्कृत में होता है मुक्त करना। तो जो मन को अशांति से मुक्त करे, दुख से मुक्त करे, वो मंत्र है। दूसरा मंत्र का अर्थ है सलाह, जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह, तो ये है मन को सलाह देना। तो मन को क्या सलाह देनी है, अगर मेरा मन सही दिशा में नहीं जा रहा है, गलत सोच रहा है, बुरे विचार कर रहा है, तो मुझे अपने मन को सलाह देनी है कि मन ये नहीं सोचना, ये सोचना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही बनते हैं। तो राजयोग में हर एक विचार एक मंत्र की तरह है, हमें कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने मन को सलाह दे रही हूं मैं कौन हूं, हमने क्या चिंतन किया, आप दो दिन से अभ्यास कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मेरा स्वभाव क्या है, मैं अपने आप को समझा रही हूं कि मेरा स्वभाव क्या है, शांति मेरा स्वभाव है, शांति ही मुझे पसंद है, तो मुझे शांत रहना है ना, इसके विपरीत जो भी भाव है, जो नेगेटिव भाव है, उनसे मुझे अपने आप को सेफ रखना है। तो ये हर एक विचार एक मंत्र की तरह है। तो शांति मुझसे कितनी दूर है, सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर है कि मैंने अपने स्वभाव में अपने को स्थित किया और मेरा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि शांति और अशांति तो चिंतन से होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। अगर मेरे विचार अशांति के हैं तो ही हम अशांति का अनुभव करते हैं, और अगर मेरे विचार शांति के हैं तो क्या अनुभव होगा, क्या अनुभव होगा, शांति अनुभव होगी। और माला जपते हैं, वैसे आज की पीढ़ी तो माला नहीं जपती है, फिर भी कोई अगर पुरानी पीढ़ी की होंगे तो माला समझ, माला फेर के सिमरन करते हैं, तो वो भी हमें ईश्वर से समीपता का अनुभव नहीं करा पाते, क्योंकि माला के मणके घुमाते हैं शुरू में तो थोड़ा ध्यान लगता है, लेकिन क्योंकि वही वही मणके घुमा के हम नाम लेते रहते हैं, तो फिर हाथ मन के घुमाता है और मन अपना काम करना शुरू कर देता है। इसलिए कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कि युगों से माला फिरा रहे हैं लेकिन मन तो नहीं फिरा, यानी मन का परिवर्तन नहीं हुआ। करना क्या है, उद्देश्य क्या है, मन का परिवर्तन करना, मन को ईश्वर में लगाना। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर माला फेरने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी विधियां हैं जो हम अपनाते हैं, लेकिन ये हमें ईश्वर से संबंध का अनुभव नहीं करा पाते। लेकिन राजयोग में जो हम आधार लेते हैं, वो आधार किसी भी मनुष्य को याद करने के जो आधार हैं, जो सूक्ष्म, क्योंकि मन सूक्ष्म है तो सूक्ष्म मन को स्थूल आधार एकाग्र नहीं कर पाते। तो जो सूक्ष्म आधार हैं, जो किसी की याद को हमारे लिए सहज बनाते हैं, वो क्या है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। कोई हमें क्यों याद आता है, ये चार कारण हैं। परिचय होना चाहिए, बिना परिचय के दुनिया में हम किसी को भी याद नहीं कर सकते। दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, हम कितने को याद करते हैं, जो हमारे परिचय में ही नहीं संबंध में भी हैं और जिनसे हमारा स्नेह भी है, जिनसे हमें कुछ प्राप्ति भी होती है, उनको हम सहज याद करते हैं। याद करना नहीं पड़ता, याद आती है, ऐसे हम कहेंगे। तो परमात्मा से अभी हमारा परिचय हुआ, हुआ परिचय हुआ सभी का, परमात्मा कौन है, कौन है परमात्मा, कौन है, उनका नाम क्या है, शिव बाबा कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। और उनके गुण कर्तव्य, वो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। मानो कोई कुमार कुमारी शादी की उम्र में है और उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है तो मन भटकता है, कौन होगा, क्योंकि परिचय नहीं है कौन होगा। लेकिन जिस घड़ी रिश्ता तय हो जाता है, बुद्धि टिक जाती है, क्योंकि अब पता है कि भविष्य साथी कौन होने वाला है ना। तो ऐसे ही परमात्मा से अब हमारा परिचय हो गया तो अब मन भटकने की बात नहीं, नहीं तो मन भटकता है, भगवान की याद में मन लगता ही नहीं, मन इधर उधर चला जाता है, क्योंकि परिचय ही नहीं है। परिचय नहीं है तो संबंध भी नहीं है। फिर संबंध में जो याद होती है, वो तीन प्रकार की याद होती है। एक है हम याद करते हैं, दूसरा याद आती है, और तीसरा याद सताती है। याद करते हैं, स्वार्थ होता है तब हम किसी को याद करते हैं, मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या हमारा कोई अवसर है और हमें निमंत्रण देना है तो हम याद करके पूरी लिस्ट बनाते हैं, कोई रह ना जाए नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, तो इसको याद करना कहते हैं। याद आती है, जैसे कहा समीप संबंध जितना है, जो हमारा परिवार में है ना, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इनके याद आती है। स्नेह इतना है कि स्वतः ही याद बनी रहती है। और तीसरी याद सताती है, माना दुख देने वाली याद। कब दुख देती है किसी की याद, किसी ने हमको दुख दिया हो, किसी ने हमको धोखा दिया हो, या किसी की मृत्यु हो गई, सदा के लिए वो हमसे बिछुड़ गए, कभी मिलने वाले ही नहीं है। या हम कहेंगे जैसे पता है कि जो चला गया वो तो लौट कर आने वाला नहीं है, तो जब भी याद करेंगे तो दुखी होंगे। किसी का बेटा विदेश में रहता है, पढ़ता है, और माँ को पता चलता है कि ये बीमार है तो दुखी होती रहेगी याद करके, पता नहीं उसने दवाई ली है नहीं ली, ठीक से खाया है नहीं खाया है, अब जा तो नहीं सकते। तो ये है दुख देने वाली याद। तो भगवान की याद, इन तीनों याद में से कौन सी होनी चाहिए, जो समझते हैं याद करते हैं वो याद करें, वो ही हाथ उठाएं, परमात्मा को हम याद करें, कोई नहीं जो, अच्छा लंबा हाथ उठाइए, अच्छा, जो समझते हैं परमात्मा की याद आती है। अच्छा, और याद सताती है, तीसरा नंबर, सताने वाली याद, वो कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट है। परमात्मा की याद सताने वाली याद नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी याद हमें दुख नहीं देती है। परमात्मा की याद तो सदा सुख देने वाली, वो तो सुख दाता है, शांति का दाता है। तो जब भी हम उसे याद करते हैं, हमारा मन सुख का अनुभव करता है, ईश्वरीय सुख का अनुभव करता है। लेकिन जो हाथ उठाया याद आनी चाहिए, वो हमें याद आती नहीं। एक एक्सरसाइज कराते हैं हम, आपके जो बहुत प्रिय हैं, यानी कहने का मतलब जिनके लिए आपको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा भी हमसे दूर होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इतने क्लोज हैं वो हमारे, आप उनका नाम सोचिए। फिर नंबर दो पर, उनके बाद कौन इतना प्रिय, नंबर टू जिसका आता है, फिर नेक्स्ट सोचिए नंबर तीन में कौन है। कोई भी हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती, पति हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी। नंबर फोर पे, और अभी आपसे पूछते हैं, इन चार में किसी के, इसमें चार में ईश्वर का स्थान आया। हाथ उठाइए जिनके लिए आया, बहुत कम, हाँ, कुछ सात आठ भाई बहने हैं। तो इतने समीप संबंध हम ईश्वर के साथ अनुभव नहीं करते कि उसकी याद हमें आए, लेकिन हम याद करते हैं भगवान को आज, जैसे कहा, स्वार्थ से हम याद करते हैं। तो हम कैसे याद, कब याद करते हैं? जीवन में जब कोई दुख होता है, जब हम सुखी हैं तब तो हम याद बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। दूसरा, कोई हमारी इच्छा पूरी करनी है, एक स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, एग्जाम देना है, रिजल्ट आने वाला है, तो भगवान को कहेगा, हाँ भगवान मुझे पास करा देना। पास होने का विश्वास है तो फिर इतने परसेंटेज में या इतने नंबर मेरे आ जाएं। अच्छा, पास हो गए तो अब अच्छी नौकरी दिला देना भगवान। अच्छा, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छे घर में शादी करा देना। अच्छा, वो भी हो गया तो अब एक अच्छा घर होना चाहिए। अच्छा, वो भी हो गया तो अगर बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए। फिर भगवान से हम सौदा भी करते हैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो हम क्या करेंगे, पता है ना, सभी करते हैं, क्या करेंगे, इतने रुपए का प्रसाद, जितनी भी हमारी क्षमता है उतना हम बोलेंगे, मेरा काम हो गया तो भगवान को प्रसाद मिलेगा, और नहीं हुआ तो वो भी भूल जाएंगे। तो हम भगवान को किस श्रेणी में ला रहे हैं, इंसान की श्रेणी में। हम सोचते हैं कि इंसान बिना लेन देन के काम नहीं करता, तो भगवान भी बिना लेन देन के हमारा काम नहीं करेगा। तो एक तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, और ये हम अनुभवी हैं अपने जीवन में। कोई भिखारी हमारे सामने आता है तो हमको कैसा लगता है, अच्छा लगता है? हमें लगता है कि अगर ये काम कर सकता है तो काम क्यों नहीं करते हैं, भीख क्यों मांगते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं देते। और लेकिन अगर हमें कोई दया का पात्र लगता है कि इसको भीख मिलना चाहिए, तो फिर हम कितना देते हैं, मेरी पॉकेट में सबसे कम नोट जो है वही हम निकाल करके देंगे। अब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, हमने भिखारी को जज किया, माना मांगने वाले को जज किया कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो भगवान हमें जज करेगा नहीं करेगा? उसने हमें इतना अद्भुत मानव शरीर दिया है, जिसमें असंभव को संभव करने की ताकत है। ऑलरेडी उसने हमें दिया है इतना, और फिर भी हम छोटी छोटी चीजें जाकर भगवान से मांगते हैं, तो वो देखेगा मेरे कर्मों के अनुसार वो मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलता तो हम भगवान से भी नाराज हो जाते हैं कई बार। तो हमारी याद ईश्वर के प्रति इस प्रकार की है वर्तमान में, लेकिन जब हम संबंध का अनुभव करते हैं ना, जैसे राजयोग में हमें ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा मात पिता है, शिक्षक है, गुरु है, हमारा साथी है। दुनिया में भी माता पिता से बच्चे मांगते नहीं हैं, माता पिता खुद चिंता करते हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, उनको क्या भोजन देना है, क्या कैसे कपड़े होने चाहिए, कौन से स्कूल में वो पढ़ेंगे, क्या उनका भविष्य होना चाहिए, कौन चिंता कर रहा होता है। तो अगर ईश्वर हमारा मात पिता है और वो संबंध हम अनुभव करते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूं, तो हमारी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होती है, हमें मांगने की कोई जरूरत नहीं है परमात्मा से। तो हम अधिकार से याद करते हैं। राजयोग में आपने देखा कोई भी विचार ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन हम स्वयं ही अपने गुणों से और परमात्मा के गुणों का स्मरण करके उनको प्राप्त करते हैं और अनुभव करते हैं। संबंध में जो याद होती है वो समानता के आधार पर, जो संबंध बनता है समीप, उसमें कहीं ना कहीं समानता, जैसे हमारे विचारों की समानता हो, कुछ प्रोफेशन की समानता हो, कुछ ना कुछ, जैसे हमारा स्टेटस है कुछ उसकी समान, कोई समानता होती है तो समीप हो जाते हैं। मानो डॉक्टर डॉक्टर मिलेंगे तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स हो जाएंगे, बच्चे बच्चे मिलेंगे तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स हो जाएंगे, कोई हमें अपनी ही जगह का मिलेगा तो हमें बहुत जल्दी उससे अपनापन हो जाएगा, है ना। आप यहाँ आए हैं, कोई मेरे ही शहर का यहाँ मुझे मिल जाए तो समानता, कोई भी समानता है। शादी भी करते हैं ना दुनिया में, तो मिलाते हैं गुण, मिलाते कुंडली मिलाते हैं। मिलाने का मतलब क्या है, गुण मिलते हैं कि नहीं। तो अगर गुण मिलते हैं तो कहते हैं योग है, और अगर गुण नहीं मिलते तो योग नहीं है, माना इनकी शादी टिकने वाली नहीं है। तो क्या देखा, समानता, है ना, इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से हमारी तीन समानताएं हैं। पहली समानता है स्वरूप की समानता, दूसरी है धाम की समानता, और तीसरी है गुणों की समानता। और जब इस आधार पर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम उनसे बहुत समीप अपने आप को अनुभव करते हैं, तो हमें याद करना सहज होता है। पहली स्वरूप की समानता है, परमात्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप है तो आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से मैच करे। वो तो सदा ही निराकार है, शिव बाबा तो कभी जन्म लेते ही नहीं है, जन्म मरण से न्यारे हैं, तो हमारी तरह वो देह धारण नहीं करते, तो वो तो सदा ही निराकार है। तो उनकी फ्रिक्वेंसी, वो तो हायर फ्रिक्वेंसी है, हायर कॉन्शियसनेस है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस है फिजिकल कॉन्शियसनेस। हम शरीर भान में रहते हैं, तो उससे ऊपर उठकर हमें सोल कॉन्शियसनेस में आना होता है। तो जब हम आत्मिक स्मृति में अपने मन को ले आते हैं तो फिर हमारी फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है और हमें अनुभव होता है। जैसे कोई रेडियो स्टेशन हमें सुनना है तो हमें क्या करना होता है, ट्यून करना पड़ता है ट्रांसमिशन की फ्रिक्वेंसी, उस रेडियो स्टेशन की जो है वो मेरे सेट पर हम ट्यून करेंगे तो हम रेडियो स्टेशन सुन पाएंगे। नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे वो रेडियो स्टेशन सुनाई देगा नहीं। चाहे टीवी देखना है तो भी चैनल आपको ट्यून करना पड़ता है, तब जाकर के हम वो टीवी चैनल देख सकते हैं। तो इसीलिए राजयोग में जो फर्स्ट स्टेप है वो है आत्मिक स्मृति का अभ्यास, जो आपने अनुभव किया कि हम पहले मन को अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से निकाल कर सोल कॉन्शियस स्टेज में ले जाते हैं। अगर हमें दो तारों को भी जोड़ना है तो तार से तार को जोड़ना होता है। रबड़ से जोड़ेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो शरीर है ये आत्मा के ऊपर आवरण है, तो इस आवरण से हमें अपने आप को डिटैच करना होता है और तब परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर फ्लो होती हैं। तो ये है स्वरूप की समानता, और दूसरा है धाम की समानता। परमात्मा परम धाम निवासी हैं, तो आत्मा का स्थान घर कौन सा है? परम धाम। आत्मा भी परम धाम से सृष्टि पर आई है, हमारा भी निज धाम असली घर परम धाम है। तो हम एक ही घर के रहने वाले हैं, जैसे पिता और बच्चे का घर एक ही होता है। तो जब हमें ये स्मृति आती है तो हमें परमात्मा को परम धाम में याद करना सहज होता है। जैसे बताया कि यहाँ पर कोई हमारे ही स्थान शहर का मिल जाएगा तो उनसे हमारी जितनी जल्दी मित्रता हो जाएगी या अपनापन हो जाएगा, बाकी सबसे इतना नहीं होता है। तो ये स्थान की समानता भी हमें समीपता का अनुभव कराती है। फिर तीसरी समानता है परमात्मा के साथ गुणों की समानता। परमात्मा जिन गुणों में सागर के समान है, आत्मा उन गुणों में स्वरूप है। अगर परमात्मा शांति के सागर हैं तो आत्मा शांत स्वरूप है। वो प्रेम के सागर हैं, आत्मा प्रेम स्वरूप है। वो सर्वशक्तिवान है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो परमात्मा को हम उन गुणों का स्मरण करते हुए याद करते हैं, यानी मनन करते हैं, मुख से नहीं बोलते। भक्ति में हम क्या करते रहे? भक्ति में भी हमने यही किया, परमात्मा के गुणों का गायन किया, कीर्तन किया। कीर्तन करना माना उसकी कीर्ति गाना, उसकी महिमा करना, क्योंकि उसमें कोई अवगुण तो है ही नहीं। तो हम उसकी कीर्ति गाते हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप कृपा निधान हैं। जो भी हम स्तुतियां करते हैं उसमें कुछ इसी तरह के वर्णन होते हैं, लेकिन हम मुख से बोलते हैं, साज भी बजाते हैं, ढोलक बाजा मंजीरे ये सब हम बजाते हैं भक्ति में। और क्या होता है, उस समय हमको शांति खुशी मिलती है, लेकिन हमारी शक्तियां बाह्यमुखी हो जाती हैं तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। भले हम भक्ति करते रहते हैं लेकिन जीवन हमारा वहीं का वहीं या कई बार और भी गिरावट में आता है। लेकिन जब हम योग करते हैं और परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें अनुभव करते हैं तो वो शक्तियां अंतर्मुखी होती हैं और हमें वो स्वरूप बनने में आसानी होती है। यानी अगर हम शांति का चिंतन कर रहे हैं तो हम शांत स्वरूप होते भी हैं। वो शांति हमारे व्यवहार में भी आती है, कर्म में भी आती है। तो ये अंतर है योग में और जो हम भक्ति में कीर्तन और भजन या गीत जो भी हम गाते हैं। तो राजयोग में हम परमात्मा को उनके गुणों के स्मरण करते हुए हम याद करते हैं। कोई कहते हैं बहन जी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो वो तो हम नहीं मांगते उनसे, सांसारिक चीजें नहीं मांगते, लेकिन जीवन में सुख शांति बनी रहे ये तो मांग सकते हैं। तो ये मांगना चाहिए, क्या कहेंगे? मांगना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सागर है ना, वो तो दाता है। और जब हम उसे याद करते हैं तो हमें अपने आप अनुभव होता है। आप सागर के किनारे जाएंगे तो हवा मांगनी पड़ेगी? सागर का गुण है हवा का, तो वो अपने आप हवा मिलती है हमें। ऐसे ही आग के पास बैठे हैं तो गर्मी मांगनी पड़ेगी? आग का गुण है गर्मी देना, तो गर्मी अपने आप ही हमें अनुभव होती है। तो वो तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो जैसे ही मन परमात्मा के समीप है, उसके संग में, हाँ ये जरूर आवश्यकता है कि हमें मन को ईश्वर में लगाना है, मन परमात्मा की याद में है तो हमें ये अपने आप अनुभव होगा, ये भी हमें मांगने की जरूरत नहीं, हे ईश्वर मुझे शांति दे दो, मेरा मन बहुत अशांत है, ईश्वर मुझे सुख दे दो, मैं बहुत दुखी हूं, ये भाषा का प्रयोग करने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप शांति के सागर हैं और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये चिंतन है, तो वो शांति का फ्लो हम महसूस करेंगे। फिर राजयोग जब हम करते हैं तो एकदम हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव इतना सहज एकाग्र होने का नहीं होता है, हमारा मन जो है वो इधर उधर के विचारों में, विषयों में भटक जाता है, तो शुरू में हमें मुश्किल लगता है क्योंकि मन की गति बहुत तेज है, एक सेकंड में मन इधर से उधर जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था में जब हम शुरू करते हैं, हमने चिंतन किया मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और दूसरा थॉट क्या आएगा, हाँ मैं शांत स्वरूप हूं, मेरे मन में तो इतनी अशांति है, या समझो आज आपको किसी से काम है तो आप सोचेंगे यहां से उठ के बाहर जाएंगे ना उससे मिलेंगे, ये काम की बात करनी है, तो क्या विचार आ गया, कोई दूसरा आ गया, फिर हम अपने मन को वापस लेकर आएंगे, नहीं अभी तो हम योग कर रहे हैं, तुरंत फिर कोई दूसरी बीती हुई बात याद आ जाएगी, तो एक संघर्ष की स्थिति कई बार है ना, एक अंतर्द्वंद की स्थिति भी उत्पन्न हमारे मन में होती है, और हम 15 मिनट बैठे या 10 मिनट 15 मिनट जितना भी समय हम बैठे, जरा भी हमें अनुभव नहीं हुआ और ही सिर भारी हो गया, तो कहते हैं अरे योग में बैठे तो और ही सिर भारी हो गया, अब सिर क्यों भारी हो गया, कई बार हमने नेगेटिव सोच लिया, कोई कोई नेगेटिव बातों को याद कर लिया, तो फिर क्या होगा, योग नहीं लगाया, ऐसे चिंतन में मन चला गया तो सिर भारी हो जाएगा, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, अपना अभ्यास को हम जारी रखें, क्योंकि कोई भी काम शुरू में मुश्किल होता है, आप ड्राइविंग सीखते हैं एक दिन में सीख जाते हैं, दुनिया में भी किसी भी कार्य में अगर हमें कुशलता लानी है तो समय लगता है, तुरंत हम किसी भी कार्य में कुशल नहीं हो जाते, तो हम ड्राइविंग सीखेंगे तो शुरू में हम कितना डरेंगे ना, एक एक चीज का ध्यान रखेंगे, और जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं तो फिर बातें करते हुए भी ड्राइव करते हैं, मोबाइल पे बात करते हुए भी ड्राइव कर लेते हैं, तो शुरू में कुछ दिन हमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब मन उन विचारों में स्थित होने लगेगा तो हमें एक मिनट भी मन की अगर शांति का अनुभव हुआ तो वही हमें फिर प्रोत्साहित करेगा कि हम योग करें और वैसा ही अनुभव करें। मानो कोई दीवार हम तोड़ते हैं और उसमें 100 हथौड़े लगाने पड़े, 100वें हथौड़े में दीवार टूटी तो क्या पहले के 99 हथौड़े बेकार गए, क्या कहेंगे, हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी। तो ऐसे ही जब हम अपने मन को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, माना मन को हमें स्पिरिचुअल थॉट्स में रखना है, योग करना माना क्या, ईश्वर की याद में मन को रखना है, उसमें हमें अपने मन को एकाग्र करना है, तो फिर थोड़ा सा समय और अभ्यास तो हमें लगता है, और इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। फिर धीरे धीरे हमारा मन परमात्मा में एकाग्र होने लगता है ना, मन संसार से, क्योंकि हम मन को संसार से भी पार ले जाते हैं, किसी को भी याद करते हैं या मिलते हैं तो 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसकी जगह पर जाएं या उसको हम अपने स्थान पर बुला लें या कोई तीसरा ही स्थान हम चुने आपस में मिलने के लिए, तो परमात्मा को हम यहां भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन हम परम धाम में याद करते हैं जो परमात्मा का धाम है, क्योंकि यहां तो मन सांसारिक बातों में उलझा ही रहेगा, उससे निकल नहीं पाएगा, तो मन को न्यारा करने के लिए हम मन को परम धाम में ले जाते हैं। तो परम धाम में परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हैं और उसका अनुभव करते हैं। उनसे हम अपने दिल की बात भी कर सकते हैं, यानी संबंधों का भी हम अनुभव करते हैं। वो माता पिता हैं तो माता पिता के रूप में हमारे क्या भाव हैं उनके प्रति, या अगर हम उन्हें अपना फ्रेंड या दोस्त समझते हैं तो हम उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कोई ऐसी बातें होती हैं जो रियली हम अपने फ्रेंड से भी नहीं कह सकते, तो हम भगवान से भी वो बातें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम परमात्मा से संबंध करते हुए उनके गुणों का अनुभव करते हुए मन को एकाग्रता की स्थिति में ले जाते हैं। मतलब अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन मन अनुभूति में होता है, पूरी तरह से शिव बाबा में या परमात्मा में मन एकाग्र है। एकाग्रता का एक बहुत अच्छा मिसाल है अर्जुन का, जो बताते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य से जब कौरव और पांडव शिक्षा ले रहे थे तो वो धनुर्विद्या सिखा रहे थे उनको, तो सिखाते सिखाते उनकी परीक्षा तो ली ही जाती है। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया रखी जिसकी आंख पर निशाना लगाना था। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। गुरु ने कहा कि ये चिड़िया तुमको दिखाई देती है? बोला गुरुजी दिखाई देती है। बोला अच्छा और क्या क्या दिखाई देता है? कहा पेड़ दिख रहा है, सब डालियां पत्ते फूल सब दिख रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि तुमसे निशाना नहीं लगेगा, तुम हट जाओ। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और उसको भी कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। तो उसने भी यही जवाब दिया। तो गुरु ने कहा कि नहीं, तुम भी निशाना नहीं लगा पाओगे। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, भीम से पूछा तो उनका गुरुजी मुझे भी सब दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, उसकी आंख भी दिख रही है। उसने कहा नहीं, तुमसे भी नहीं होगा। फिर अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने बोला गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुम तीर चलाओ। उसने तीर चलाया तो पूरा उसकी आंख पर ही निशाना लगा। तो इसको कहते हैं एकाग्रता, में सिर्फ लक्ष्य पर ही नजर, और कुछ दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो ये स्थिति है कि जब शिव बाबा के सिवाय और कोई बात हमारे मन में नहीं, माना मन भी एक अंतर्चक्षु है, मन से भी दिखाई देता है, तो मन से और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम पूरी तरह से ईश्वर में एकाग्र हैं, उसकी लगन में हैं, वो स्थिति में हम रियलाइजेशन की स्थिति में चले जाते हैं। ये रियलाइजेशन माना शांति है तो सिर्फ शांति का अनुभव है, थॉट्स नहीं है। आनंद है तो सिर्फ आनंद का अनुभव है, कोई थॉट्स नहीं है। सुख है तो उसका अनुभव है, और इससे मन की स्थिति बदल जाती है। मानो आप योग में बैठे, आपका मन किसी कारण से अशांत है, थोड़ा परेशान है, लेकिन जब हम रियलाइजेशन की स्टेज में चले जाते हैं तो पूरी अशांति खत्म, मन शांत हो जाता है। अगर कोई कारण से मेरा मन दुखी है तो वो दुख की फीलिंग खत्म, हम सुख में आ जाते हैं, सुख की स्थिति में आ जाते हैं। या कोई कारण से मेरा मन उदास है तो हम योग की स्थिति के बाद मन खुश हो जाता है ना, उस खुशी का हम अनुभव करते हैं। तो ये मन की स्थिति को बदलने वाला है, और ये अनुभूति हमें होती रहती है समय प्रति समय। अब योग की विधि क्या है? आधार तो हमने समझा, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। लेकिन विधि में हम बैठक लेते हैं, सहज बैठक, जो बैठक में हम आराम से 20 मिनट से आधा घंटा बैठ सकते हैं, वो बैठक में हम योग करते हैं। सामान्यतः योगियों को फर्श पर माना जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठे हुए दिखाया जाता है, पर आज के समय में इतना कठिन आसन लगाकर हम योग नहीं कर सकते हैं ना, हमें इतना अभ्यास नहीं होता। वैसे वो उत्तम होता है, क्योंकि जब हम आसन लगाकर बैठते हैं, पद्मासन या सुखासन लगाकर जमीन पर बैठते हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है और वो एनर्जी फ्लो करता है, और साथ में हम अपने अंगों को भी बांधे हुए होते हैं तो बॉडी में भी वो एनर्जी सर्कुलेट करती है, तो एकाग्रता में हमें मदद मिलती है। लेकिन अगर हम नहीं बैठ सकते तो फिर हम सहज में, जैसे कुर्सी सोफे पर आप बैठे हैं या हमारे घर में भी जो भी बैठने का ऐसा आरामदायक स्थान है उसमें हम बैठे और योग अभ्यास करें। आंखें खुली रख करके राजयोग का अभ्यास किया जाता है। सामान्यतः हम ध्यान की बात करते हैं तो फिर हम सोचते हैं आंख बंद करके ही ध्यान हो सकता है, लेकिन राजयोग कर्म योग है, क्योंकि कर्म करते हुए अगर हम याद करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे तो हम कर्म नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं फिर, तो इसीलिए आंख खोल के ही हम अभ्यास करते हैं ताकि हम चलते फिरते खाते पीते जो भी हमारे साधारण कर्म हम करते हैं वो कर्म करते हुए भी भगवान को याद कर पाए। दूसरा, अगर हम आंख बंद करेंगे और हम थके हुए हैं, एक तो होता है कि सुबह उठते ही प्रातः काल योग अभ्यास का बेस्ट समय होता है प्रातः काल, यहां पर तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, आपको पता नहीं कहा गया या नहीं, जैसे सुबह 4 बजे उठ करके योग अभ्यास करना आप आते हैं यहाँ 4 बजे। हाँ, तो अब राजयोग में एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेले के समय को उत्तम माना गया, उस समय हम करें क्योंकि ये हमारा अपना ही टाइम है। इस समय हमारे सारे दिन की जो काम है या दूसरी और बातें हैं उसका व्यवधान नहीं है। और दूसरा, सायंकाल का समय, ऐसे तो हम कभी भी कर सकते हैं लेकिन जो उत्तम समय की बात कर रही हूं मैं, प्रातःकाल और सायंकाल, संध्या का समय जो होता है, तो जब हम वो योग अभ्यास कर रहे हैं उस समय हम जो संदर्भ बता रहे थे आपको, हाँ, खुली आंखों के लिए, तो मानो उस समय हम बैठे और हमने आंख बंद कर ली, तो सोकर उठे हैं और आंख बंद कर ली तो क्या होगा? निद्रा योग करेंगे, राजयोग नहीं करेंगे। भले ही लगेगा बहुत अच्छी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन कौन सी शांति? नींद की शांति ना। तो और थके हुए हैं, शाम को अगर आप बैठते हैं और आप थके हुए हैं और आंख बंद कर ली तो क्या होगा? फिर भी नींद आ जाएगी। यहां भी हम देखते हैं जब योग अभ्यास कराते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ कुछ अच्छी नींद में चले जाते हैं। आंख बंद करना माना नींद का आह्वान करना, क्योंकि आंख बंद करके हम सोते हैं तो आदत है सोने की, आंख बंद करते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी मेमोरीज हैं, इसलिए हम सपने देखते हैं। जब आंख बंद होती सोते हैं तभी सपने देखते हैं, तो वो मेमोरीज जागृत होती हैं, तो फिर मन कहाँ का कहाँ गया। जब आप पूर्व की स्मृतियों में चले जाते हैं तो मन को पुनः वापस लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम खुली आंख से योग करते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, क्या रखा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन खुली आंख से हमें अपने मन को एकाग्र करने की आदत है। जो हम काम करते हैं उसमें एकाग्र कैसे होते हैं? आंख बंद करके थोड़ी एकाग्र होते हैं। आज मानो पढ़ रहे हैं आप कोई चीज और पढ़ने में एकदम खोए हुए हैं और कोई आपके पास से गुजर गया या कोई कुछ बोलता है, हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, कोई पूछेगा तो हम कहेंगे मुझे पता नहीं, मैं तो पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान तो कहीं और है। यानी अगर मन ने नहीं देखा, मन कहीं और है, तो आंखें देखते हुए भी जैसे नहीं देखती हैं। तो जब हम योग कर रहे हैं तब हमारा मन कहाँ है? परम धाम में, परमात्मा की याद में है। तो इसीलिए मन एकाग्र होते हुए होने पर हमें न कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है, उससे हम परे हो जाते हैं। यहां तक कि अगर नगाड़े भी बज रहे होंगे तो भी हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि मन नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए आंख खोल के योग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें कोई अनुभव हो रहा है और आंख बंद हो जाती है तो ऐसे ये हठयोग भी नहीं है कि हम आंख बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो जैसा हमें सुविधा लगती है, पर प्रयास हम यही करें कि खुली आंख में भी हमारी एकाग्रता हो। फिर ऐसा भी सोचते हैं कि योग करना माना विचार शून्य हो जाना, ये कुछ भ्रम है। जैसे विचार शून्य हो जाना, तो हमारा मन विचार शून्य नहीं हो सकता, मन की प्रकृति ही सोचने की है। क्योंकि कुछ कुछ योग में ऐसा बताते हैं कि कुछ मन में चिंतन ना चले, थॉटलेस हो जाएं। तो लेकिन राजयोग में हम विचार शून्य नहीं करते, मन को सुमन बनाते हैं। सुमन माना जैसे बताया सकारात्मक चिंतन, यानी आध्यात्मिक चिंतन, सकारात्मक भी नहीं हम कहेंगे, आध्यात्मिक चिंतन माना स्पिरिचुअल थॉट्स, वर्ल्डली थॉट्स नहीं करते हम। योग अभ्यास के दौरान सांसारिक विचारों को स्टॉप करके उनकी दिशा बदल के हम स्पिरिचुअल थॉट्स में अपने मन को ले आते हैं, तो वो चिंतन में हमारा मन जा सकता है। क्योंकि सोच तो रहे हैं हम, लेकिन उसकी दिशा हमने बदल दी सोचने की। और हम ये अभ्यास कर सकते हैं, जैसे बताया कि ये इतना कठिन नहीं है। जरूर हमें शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन कठिन नहीं है। ऐसे मेडिटेशन इज डिफिकल्ट ये नहीं कह सकते हम, ये तो सहज राजयोग है। योग के लिए तो हमने बताया आपको राजयोग के लिए कि ये तो सहज राजयोग है। और योग अभ्यास के दौरान हम कुछ लाइट्स चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे रेड लाइट करते हैं, तो वो परम धाम की स्मृति दिलाता है मन की कंडीशनिंग करने के लिए। एक व्हाइट लाइट में ही हम योग करने लगेंगे तो हमें लगेगा नहीं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन एक चेंज हो जाता है जैसे, तो हम तैयार हैं कि हाँ अभी हमें योग करना है। फिर रेड स्टॉप का भी सिग्नल होता है, तो यही सिग्नल है कि अब वर्ल्डली थॉट्स को स्टॉप करना है और स्पिरिचुअल थॉट्स में हमें अपने मन को ले जाना है। और रेड कलर शक्ति को इकट्ठा करता है, तो इसमें हमें मदद मिलती है। क्योंकि योग अभ्यास हम शक्ति के लिए ही कर रहे हैं, तो ये मदद हमें मिल जाती है। हम कुछ गीत भी सुनते हैं। आप देखते हैं जब भी कोई सेशन शुरू होता है, कुछ मिनट्स मेडिटेशन और उसमें सॉन्ग प्ले होता है, तो वो गीत प्रभु स्मृति के हैं। जब हम परमात्मा की स्मृति का गीत सुनते हैं तो हमारे मन की दिशा बदल जाती है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, हम किस तरह के गीत सुनते हैं, मन उसी दिशा में चला जाएगा। आप भक्ति गीत सुन रहे हैं तो मन भक्ति भाव में आ जाएगा। आप देशभक्ति का गीत सुन रहे हैं तो देशभक्ति के भाव आ जाएंगे। और कोई साधारण फिल्मी गीत सुन रहे हैं तो संगीत संगीत का प्रभाव हमारे मन पर होता है, और वो भी हमें मन को एकाग्र करने में मदद करता है। अब सारे दिन हम कितने ही कार्यों में होते हैं, उनके प्रभाव हमारे मन पर होते हैं। और फिर शाम को यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमने सॉन्ग प्ले किया, तो हमारा मन सहज ही उससे निकलकर ईश्वर की ओर आ जाएगा। और जैसे कहा कि हम कोई स्थान अपने घर में बनाएं। अगर सेवा केंद्र हमारे घर के पास है तो बेस्ट होता है, क्योंकि वहां वातावरण है। जैसे आप इस स्थान पर आए हैं, यहाँ की अनुभूति, और दुनिया में और भी स्थान होते हैं उसकी अनुभूति है ना, और भी हॉल होते हैं, फर्क है या नहीं है? क्योंकि ये चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर इसी लक्ष्य से सभी आते हैं, तो उसी तरह के चिंतन और भाव के वाइब्रेशंस इस हॉल में है या इस कैंपस में है। तो सेवा केंद्र पर जाना, वो ये हमारी मदद होती है। इसको बोलते हैं पैसिव हेल्प। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन अपने आप वो मन की शांति का, हमें शांति के लिए मेहनत नहीं, लेकिन मन उस शांति की स्थिति में खुद ही चला जाता है। तो सेवा केंद्र पर मेडिटेशन कर सकते हैं जाकर, तो हम वहां करें। और अगर संभव नहीं है, समय नहीं है या दूर है, तो हम अपने घर में कोई स्थान बनाएं और वहां पर हम वहीं बैठकर, वो स्थान जो शांति का है और एकांत हमें मिलता है जहां पर, है ना, उस स्थान पर हम रोज ध्यान करें। तो ये विधि है और इस तरह से प्रतिदिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमने जो भी आपको प्रारंभ में बताया कि जो हमें योग की प्राप्तियां लाभ होते हैं वो अनुभव हम अपने जीवन में करने लगते हैं। तो अभी हम आज जो आपने विधि सीखी उस विधि के अनुसार कुछ मिनट्स के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठेंगे, अपने मन को आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, आवाजों से न्यारा करेंगे और जो चिंतन आपको दिया जाए उसके अनुसार ही अनुसरण करते हुए अनुभव करें। हो सकता है मन इधर उधर जाएगा, लेकिन मन को पुनः उन्हीं विचारों में लाने का प्रयास करें और मन को तैयार करें एक अंतर यात्रा के लिए। मन को चिंतन दे, मैं एक चेतनीय शक्ति आत्मा हूं, एक चमकते हुए सितारे के समान मस्तक के मध्य में मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मुझे पसंद है। शांति में ही सुख समाया है। शांति में ही शक्ति है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अपने अनादि रूप में मैं शुद्ध और पवित्र हूं। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है। ले जाए मन को इस भौतिक जगत से पार, उस सुनहरी लाल प्रकाश के शांति के सागर हैं। शिव बाबा की याद से मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान है। उनकी सर्व शक्तियों से मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन रही हूं। जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहूं, जो करना चाहूं कर सकती हूं। शिव बाबा, आप ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। मेरे कल्याणकारी, मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी याद के ये पल मेरे लिए बहुत अनमोल है। आपने मुझे अपना बच्चा बनाकर, अपना स्नेही देकर मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। शिव बाबा की याद से मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। और शांति और शक्ति का अनुभव लेते हुए अब मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं, लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति शांति।